लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे यथार्थ मानव बंधुत्व के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने धर्म के कारण भेदभाव से पीड़ित हैं, ताकि उनके मानवाधिकारों और उनकी गरिमा को पहचाना जा सके तथा वे प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन के भागीदार बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 23 जनवरी को ईश्वचन रविवार के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा।
अरी फ्रतेली ए सोरेले, बोंजोर्नो।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
नेल वांजेलो दे ला लिटुर्जिया ओडियर्ना वेदियामो जेसु che inaugura la sua predicazione, la prima predica di Gesù.
आज के धर्म विधि के सुसमाचार पाठ में हम यीशु को देखते हैं जो अपने उपदेश का उद्घाटन करते हैं। यीशु का पहला उपदेश। वे नाजरेत जाते हैं जहां बड़े हुए और सभागृह में एक प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं। वे पढ़ने के लिए उठ खड़े होते हैं और नबी साइस की पुस्तक में उस परिच्छेद को खोलते हैं जहां मसीह के संबंध में लिखा है कि वे गरीबों एवं पीड़ितों के लिए सांत्वना और मुक्ति के संदेश की घोषणा करने वाले हैं। पाठ के अंत में सभी लोगों की आंखें उन पर टिकी रहती हैं। यीशु यह कहते हुए शुरू करते हैं, आज धर्मग्रंथ का यह पाठ आप लोगों के सामने पूरा हो गया है। संत पापा ने कहा, हम इस आज पर थोड़ी देर चिंतन करें। यह संत लूकस रचित सुसमाचार में यीशु के उपदेश का पहला शब्द है। प्रभु द्वारा उच्चारित यह आज हर युग और हर समय के लिए अर्थपूर्ण है। ईश्वर का वचन हमेशा आज है। यदि आप ईश्वर वचन पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा में एक आज शुरू होता है, बशर्ते कि आप उस पर ध्यान देते हैं। नबी साइस ने सदियों पहले भविष्यवाणी की थी, किंतु यीशु पौत्र आत्मा की शक्ति से इसे प्रासंगिक बनाते हैं और सबसे बढ़कर वे इससे पूरा करते हैं। फिर भी यीशु के गांव के आसपास के लोग उनके शब्दों से ठोकर खाते हैं। पूर्वाग्रह से भरे होने के कारण वे उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। वे महसूस करते हैं कि उनकी शिक्षा दूसरे गुरुओं से अलग है। उन्हें लगता है कि यीशु में कुछ खास है। संत पापा ने कहा,
C'è di più. Che cosa? C'è l'unzione dello Spirito Santo.
उनमें क्या खास है? उनमें पवित्र आत्मा का अभिषेक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी शिक्षा और हमारे उपदेश सामान्य एवं अस्पष्ट रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आज की शक्ति की कमी होती है, जिसमें यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति से अर्थ प्रदान करते हैं। संत पापा ने कहा,
Sì, dalle volte si ascoltano conferenze impeccabili, discorsi ben costituiti, che però non smuovono il cuore e così tutto resta come prima.
आप उत्तम व्याख्यान और अच्छा भाषण सुनते, फिर भी हृदय परिवर्तित नहीं होता। इस तरह सब कुछ पहले के समान रह जाता है। उपदेश में भी यही खतरा होता है। पौत्र आत्मा के अभिषेक के बिना ईश वचन शक्तिहीन हो जाता है। यह नैतिकतावाद और अमूर्त धारणा मात्र रह जाता है जो सुसमाचार को अलग प्रस्तुत करता, मानो कि इसका समय समाप्त हो चुका है और यह वास्तविकता से दूर है। लेकिन एक शब्द जिसमें आज की शक्ति नहीं धड़कता वह यीशु के योग्य नहीं है और लोगों के जीवन को मदद नहीं करता। यही कारण है कि जो उपदेश देता है उसे यीशु के आज का अनुभव होना चाहिए, ताकि वह दूसरों के आज में उससे बतला सके। संत पापा ने सभी प्रचारकों एवं सुसमाचार के संदेश वाहकों को धन्यवाद देते हुए कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश वचन के इस रविवार को मैं सभी प्रचारकों एवं सुसमाचार के संदेश वाहकों को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें, जिससे कि वे यीशु के आज को जी सकें, उनकी आत्मा की शक्ति को जो ईश वचन को सजीव बनाता है। ईश वचन वास्तव में जीवित और सक्रिय है, यह हमें बदल देता है, हमारे कामों में प्रवेश करता, हमारे दैनिक जीवन को आलोकित करता, सांत्वना देता एवं सुव्यवस्थित करता है। संत पापा ने कहा, हम याद रखें, ईश वचन किसी भी दिन को आज में बदल सकता है जिसमें ईश्वर हमसे बोलते हैं। अतः हम सुसमाचार को अपने हाथ में लें, हर दिन एक छोटा पाठ पढ़ें, तब धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि वे शब्द विशेष रूप से हमारे लिए हैं। वे हमें हर दिन को अधिक अच्छे और शांत भाव से स्वीकार करने में मदद देंगे, क्योंकि जब सुसमाचार आज में प्रवेश करता तब यह ईश्वरमय हो जाता है। संत पापा ने विश्वासों के सामने एक प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इस पूजन पद्धति वर्ष में संत लूकस रचित सुसमाचार करुणा के सुसमाचार की घोषणा है। क्यों न हम इससे व्यक्तिगत रूप से पढ़ें, हर दिन एक छोटा पाठ पढ़ते हुए आइए हम सुसमाचार को जानें, यह हम में नयापन लाएगा और हमें ईश्वर का आनंद प्रदान करेगा। ईश वचन एक प्रकाश स्तंभ के समान है जो सिनोडल रास्ते को आलोकित करता है, जिसकी शुरुआत पूरी कलीसिया में की गई है। जब हम एक दूसरे को ध्यान एवं आत्मपरक के साथ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम एक साथ ईश वचन और पौत्र आत्मा को सुने। कुंवारी मरियम हमारी माता हमें हर दिन सुसमाचार से पोषित होने में मदद दें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Dominus, Ave Maria.
Concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत उन्होंने सन सल्वाडोर में धन्य घोषणा की याद की एवं यूक्रेन में तनाव के मद्देनजर शांति हेतु प्रार्थना दिवस का आह्वान किया। उन्होंने कहा,
ieri a San Salvador sono stati beatificati il sacerdote gesuita Rutilio Grande Garcia.
कल सन सल्वाडोर में जेसुइट पुरोहित रुतिलियो ग्रांडे गर्चा, उनके दो साथी लोक धर्मियों एवं फ्रांसिस्कन पुरोहित कोस्मेस पिसोत्तो की धन्य घोषणा हुई, जो विश्वास के लिए शहीद हो गए थे। वे गरीबों के साथ खड़े हुए सुसमाचार, सच्चाई एवं न्याय का साक्ष्य देते हुए खून बहाया। उनका साहसी उदाहरण सभी लोगों को भाईचारा एवं शांति के माध्यम बनने का साहस प्रदान करे। तब संत पापा ने ताली बजाकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात संत पापा ने यूक्रेन में तनाव के लिए चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं बड़ी चिंता के साथ बढ़ते तनाव को देख रहा हूं, जो यूक्रेन की शांति के लिए धक्का है और यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा का सवाल। उन्होंने अपील करते हुए कहा, मैं भली इच्छा रखने वालों से हार्दिक अपील करता हूं कि वे अपनी प्रार्थना को सर्वशक्तिमान ईश्वर को चढ़ाएं, ताकि हर राजनीतिक कार्रवाई एवं प्रयास अपने स्वार्थ के बदले मानवीय भाईचारा की सेवा में समर्पित हो। जो कोई दूसरों की हानि के लिए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, वह एक मनुष्य के रूप में खुद की बुलाहट का तिरस्कार करता है, क्योंकि हम सभी भाई हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए संत पापा ने 26 जनवरी को शांति हेतु प्रार्थना करने का आह्वान किया है। संत पापा ने ख्रिस्ती एकता प्रार्थना सप्ताह की भी याद की है। उन्होंने कहा है, इस पृष्ठभूमि पर मैंने लियोन के संत इरेनियस के कलीसिया के धर्माचार्य के रूप में प्रस्ताव को स्वीकार किया है। उनकी धर्म शिक्षा एवं सिद्धांत पूर्वी और पश्चिमी कलीसियाओं के बीच सेतु के समान है। ईश्वर उनकी मध्यस्थता द्वारा पूर्ण ख्रिस्ती एकता के लिए काम करने की कृपा प्रदान करें। उसके बाद संत पापा ने रोम तथा इटली एवं विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Auguro a tutti una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
दास वचन का खुल जाए प्रभु वाणी मन में आए दास वचन का खुल जाए प्रभु वाणी मन में आए संग लाए नया जीवन हालेलुया हालेलुया मन हो जाए पावन हालेलुया हालेलुया वचन ईश्वर के संग था आज वह प्रीत लिए आया है यहाँ आशा की वो किरण है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 24 जनवरी को संत क्लेमेंटीन सभागार में कनोनेसेस के संत अगुस्टीन के नोटर डेम धर्म संघ की धर्म बहनों की महासभा के प्रतिभागियों से मुलाकात की। संत पापा ने वाटिकन में उनका स्वागत करते हुए जनरल सुपीरियर के परिचय भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, आपके शैक्षिक कार्यक्रम के द्वारा प्रभु का आत्मा नई पीढ़ियों और परिवारों की सेवा में एक समग्र मानवतावाद और एक अधिक भ्रातृत्वपूर्ण दुनिया के लिए प्रकट हुआ है। आज हम व्यक्ति के प्रशिक्षण और शिक्षा की चुनौती का सामना कर रहे हैं। संत पापा ने उन्हें अपने संस्थापकों संत पियरे फुयेर और धन्य एलिक्स के क्लर्क की सुसमाचारी अंतर्दृष्टि के प्रति निष्ठा को खुद को लोकप्रिय शिक्षा विश्वास की शिक्षा न्याय के लिए शिक्षा और गरीबों के साथ निकटता के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। उन्होंने कहा कि इस उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद संस्कृति में जब सभी अपने आरामदायक जिंदगी की खोज करते हैं दूसरों के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है। विभिन्न देशों में जहां वे काम करते हैं संत पापा ने उन्हें मिशनरी शिष्य और आशा एवं आनंद का समुदाय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा कि महासभा की विषय वस्तु उन्हें युवाओं के अभिन्न विकास में योगदान देने के एक नए संभावित तरीकों पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया के साथ वे भी उन पर भरोसा करते हैं। अपने शब्दों अपने कार्यों और अपनी गवाही द्वारा आप दुनिया को एक मजबूत संदेश भेजते हैं जो कमजोर लोगों को खारिज करता है। वे अच्छाई और सच्चाई के स्रोत ईश्वर की आराधना में और पुनर्जीवित मसीह की सहभागिता में दुनिया को सकारात्मक और आशा के नजरिए से देखने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इस तरह से एक शिक्षक के रूप में उनका मिशन समाज की भलाई के लिए लोगों के बीच गुणवत्तापूर्ण फल लाएगा। शिक्षित करना हमेशा आशा का कार्य होता है जो उदासीनता की और लकवाग्रस्त तर्क को परिवर्तन करके सहभागीदारी और अलग तरह के तर्क में बदलने के लिए आमंत्रित करता है जो हमारे सामान्य संबंध का स्वागत करने में सक्षम है। संत पापा ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने विशेष रूप से शिक्षा पर और युवाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने अलगाव उदासी और निराशा में रहने वाले युवाओं के निकट आने हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, वास्तव में निकटता की भाषा को विशेषाधिकार प्राप्त होनी चाहिए। संबंध परक और अस्तित्वगत प्रेम की भाषा जो हृदय को छूती है जीवन तक पहुंचती है आशा और इच्छाओं को जगाती है। अंत में संत पापा ने उन्हें और धर्म संघ की सभी धर्म बहनों को माता मरियम के सिपुर्द करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कैथोलिक पंचांग के तीसरे सामान्य रविवार को कलीसिया ईश वचन रविवार मनाती है। इस दिन संत पेत्रुस महागिरजाघर में पवित्र मिसा के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए 5 पुरुषों और 3 महिला प्रचारकों को सम्मानित करते हुए नया प्रेरितिक कार्य सौंपा। संत पापा ने अपने प्रवचन में पाठ के 2 पहलुओं पर प्रकाश डाला। ईश वचन ईश्वर को प्रकट करता है और उसका वचन हमें मनुष्यों की ओर ले जाता है। संत पापा ने कहा, सुसमाचार में यीशु ने प्रकट किया कि वे गरीबों और उत्पीड़ितों को मुक्त करने के लिए आए हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर मानवता के प्रति उदासीन या उनसे दूर नहीं है, बल्कि मनुष्य के करीब हैं और उनकी देखभाल करना चाहते हैं। वे अपने वचन के माध्यम से ऐसा करते हैं। संत पापा ने कहा, वे आपके डर रूपी राख के बीच आशा को फिर से जगाते हैं। आपको अपने दुखों की भूलभुलैया में खुशी को फिर से खोजने में मदद करते हैं। एकांत की भावनाओं को आशा से भरते हैं। संत पापा ने कहा, ईश्वर का वचन विश्वास को पोषित और नवीनीकृत करता है। आइए हम इसे अपनी प्रार्थना और अपने आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में रखें। ईश्वर की प्रकाशना हमें मानव जाति की ओर ले जाती है। जब हम ईश्वर को खोजते हैं तो हम पूजा अर्चना के बाहरी आडंबरों और धार्मिकता में खुद को बंद करने के प्रलोभन से बाहर निकलते हैं। ईश्वर का वचन हमें मुक्तिदायी प्रेम की शक्ति के साथ खुद से बाहर आने और अपने भाइयों एवं बहनों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। विशेष रूप से यीशु ने नाजरेत के सभा गृह में कहा था कि उन्हें गरीबों को मुक्त करने के लिए भेजा गया है। संत पापा ने कहा, इस तरह वे हमें ईश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली आराधना दिखाते हैं, अर्थात पड़ोसी की देखभाल करना। संत पापा ने कलीसिया में कठोरता के प्रलोभन की निंदा की, जिसे उन्होंने विकृत और एक मूर्ति के रूप में वर्णित किया। उन्होंने एक तरह की दिव्य आध्यात्मिकता के खिलाफ भी बात की, जैसा कि कलीसिया आज एक प्रलोभन का सामना कर रही है, एक तरह का प्रज्ञानवाद जो ईश्वर के उन वचनों का प्रस्ताव करता है जो वास्तविकता से बाहर है। संत पापा ने कहा कि ईश्वर का वचन ख्रिस्तियों के रोजमर्रा की जिंदगी में ठोस परिस्थितियों में देह धारण करता है, ताकि ख्रिस्तीय अब उदासीन न रहें, लेकिन अपने भाइयों और बहनों तक अपनी रचनात्मक पहुंच बनाएं। आइए हम ईश्वर के वचन को सुनें, प्रार्थना करें और उनके वचन को व्यवहार में लाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। संयुक्त राष्ट्र बालकों संगठन यूनिसेफ ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षा पर कोविड-19 के प्रभाव का नया डेटा प्रकाशित किया, जिसके अनुसार 635 मिलियन से अधिक छात्र स्कूलों के आंशिक या पूर्ण रूप से बंद होने से प्रभावित हुए हैं। यूनिसेफ के शिक्षा प्रमुख रॉबर्ट जेनकिंस ने कहा, मार्च में हम कोविड-19 से जुड़े 2 साल के वैश्विक शिक्षा व्यवधान को चिन्हित करेंगे। हम बच्चों की स्कूली शिक्षा के पैमाने का लगभग अपूर्णीय नुकसान सह रहे हैं। सीखने में व्यवधान समाप्त होना चाहिए, लेकिन केवल स्कूलों को फिर से खोलना पर्याप्त नहीं है। छात्रों को खोई हुई शिक्षा के लिए गहन समर्थन की आवश्यकता है। स्कूलों को सीखने के स्थानों से भी आगे जाना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य एवं बच्चों के भौतिकी, सामाजिक विकास और पोषण का पुनर्निर्माण करना चाहिए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।